प्यारे साथियों नमस्कार। आज 28 जनवरी 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी क्रम में फ्रेंड्स मैं स्वागत करता हूं अपने उस एक नौजवान साथी का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन नौजवान साथी का नाम है महिपाल चौधरी जो जोधपुर राजस्थान से हैं। तो महिपाल जी अपनी एकेडमी की पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत है। आप आए मन बनाकर आए और हम देखते हैं कि एक दूसरे से क्या ले सकते हैं और एक दूसरे को क्या दे सकते हैं। और मुझे यकीन है कि दोस्तों आज 28 जनवरी है और ठीक एक महीने के बाद 28 फरवरी की सुबह वो पहली सुबह होगी जब सामने पूरे हिंदुस्तान से आए हुए नौजवान स्टूडेंट्स बैठे होंगे और दूसरी तरफ फैकल्टी होगी और हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हुए ये जानेंगे कि वाकई में सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। तो दोस्तों फरवरी में आने वाले सभी नौजवान साथियों का भी मैं एक महीने पहले प्रतीक्षारत स्वागत करता हूं। दोस्तों अब हम आते हैं लाइफ मैनेजमेंट वाले भाग में। सच पूछिए तो कभी कभी मुझे बड़ा द्वंद किसी स्थिति महसूस होती है और वो इसलिए मित्रों की मेल आते हैं तो उसमें ये होता है कि जो ऑडियो फॉर एक्सीलेंस है उसकी जगह किसी और सब्जेक्ट पर लेक्चर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। कोई ये लिखता है कि जो डेली ऑडियो गाइडेंस में लाइफ मैनेजमेंट का जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए और उसकी जगह पर अगर न्यूज़ की बात की जाए या ऑप्शनल पेपर की बात की जाए या कुछ और परीक्षा से संबंधित बातें की जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और नो डाउट कि सबकी अपनी अपनी सोच है और सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। आज तो मुझे एक बड़ा जबरदस्त मेल मिला है एक स्टूडेंट का जो दिल्ली की हैं की मैं जानबूझ के कह रहा हूं कि वो लड़की हैं। उन्होंने बड़ा जबरदस्त मेल लिखा है और बड़े खुलेआम उन्होंने घोषणा भी की है कि मैं बहुत बोल्ड हूं। तो मित्रों ये तो सब चलता रहता है, सबको अपनी बातें कहने का अधिकार होता है और मैं उन सबको देखने पढ़ने सोचने समझने के बाद फिर निर्णय लेता हूं कि क्या किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक जो आप लोगों के मेल मिले हैं दोस्तों और इससे जो रिस्पांस मुझे देखने को मिला है खासकर तब भी जब मेल आते हैं और तब भी जब आप सब क्लास में आते हैं, मैं एक बात जरूर यहां शेयर करना चाहूंगा और वो ये कि चाहे वो ऑडियो फॉर एक्सीलेंस हो या लाइफ मैनेजमेंट वाला पार्ट हो, आप लोगों ने दो बातें अगर ध्यान दी हो तो मैं समझता हूं कि आप इससे सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। पहली बात तो मित्रों ये कि जब हम लाइफ मैनेजमेंट की बात करते हैं या ऑडियो फॉर एक्सीलेंस की बात करते हैं तो वो सिर्फ लाइफ की ही बात नहीं होती है, वो पर्सनालिटी की बात होती है। देखिए लाइफ पर्सनालिटी से अलग नहीं है और पर्सनालिटी लाइफ से अलग नहीं है, ये बात आपको अपने दिमाग में बसानी रचानी पड़ेगी। आपको लगता होगा कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठते हैं तो वो क्या है, करंट अफेयर्स पर क्वेश्चंस पूछते हैं, आपके हॉबी के बारे में पूछते हैं, आपके बैकग्राउंड्स के बारे में पूछते हैं और बात खत्म हो जाती है, इंटरव्यू हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो केवल एक माध्यम है, उसके जरिए वो कुछ आप में कुछ और टटोलते रहते हैं, कुछ और जांचना और परखना चाहते हैं। वो जब तक आपके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं बन जाएगा लाइफ मैनेजमेंट का बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट, तब तक वहां आप बहुत अच्छे नंबर लेकर नहीं आ सके और सकते। और मित्रों मैं बताना चाहूंगा कि जो इंटरव्यू का जो स्टेज होता है बहुत ही सेंसिटिव स्टेज होता है और वहां दो दो चार चार नंबर से बाजियां हार जाते हैं या बाजियां जीत जाते हैं। इसीलिए आप लाइफ मैनेजमेंट को इंटरव्यू की तैयारी से जोड़कर देखें। दूसरी बात मित्रों, अब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में देखिए धीरे धीरे इसका दायरा फैलता चला जा रहा है और वो दायरा ये है कि अब जो आपकी मोरल एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है और जनरल स्टडीज का फोर्थ पेपर आपका जो आईएएस में है मेंस में वो तो इसी पर बेस्ड है। मेरा दावा है कि जो भी स्टूडेंट एक साल से इस लाइफ मैनेजमेंट वाले पोर्शन को पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं और अभी जो मैंने आडियो फॉर एक्सीलेंस शुरू किया है, अभी तो वो शुरू ही हुआ है, इसे थोड़े दिन और चलने दीजिए, तो आप देखेंगे कि कैसे जो फोर्थ पेपर है उस पर आपकी बड़ी डिफरेंट किस्म की कमांड होगी। मैं जानबूझकर वर्ड यूज कर रहा हूं, डिफरेंट किस्म की कमांड होगी। डिफरेंट किस्म का मतलब यह है कि जो दूसरे स्टूडेंट होंगे वो अपनी बात लिखकर आएंगे, अपने ढंग से लिख करके आएंगे, और वो भी सही ही होंगी, और उसमें उनमें उनको नंबर भी मिलेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आप जो लिखकर आएंगे वो दूसरों से डिफरेंट होने की वजह से आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंट अलग फायदा पहुंचाएगा ही। इसलिए दोस्तों, ये जो लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं उसे आप इस रूप में मत लेकर के चलिए कि ये टाइम वेस्टेज है, इससे तो आपके सिविल सर्विस की कोई तैयारी नहीं हो रही है, इससे तो आपको पता ही नहीं लगा कि भारत और फ्रांस के संबंध में क्या बदलाव हुए हैं, तो क्या फायदा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप अपनी तैयारी के साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं, और शायद जो आप सुन रहे हैं उसके साथ भी न्याय नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सोच का दायरा आपको विस्तृत करना होगा। अदरवाइज फ्रेंड्स, मेरे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है जो जनरल स्टडीज पर बेस्ड जो न्यूज पेपर्स और न्यूज AIR न्यूज की एनालिसिस होती है, उसको जहां मैं आपके लिए 20 मिनट देता हूं, 15 मिनट देता हूं, उसको मैं 20 मिनट भी दे सकता हूं, उसको मैं 25 मिनट भी दे सकता हूं, उसको मैं आधा घंटा भी दे सकता हूं। लेकिन आप मान करके चलिए कि ये जो तैयारी होगी, जिससे मैं कहना चाहूंगा एक लंगड़ी तैयारी होगी या वैसाखियों पर की जाने वाली तैयारी होगी, परफेक्ट तैयारी नहीं होगी। दूसरी बात मित्रों, मैं ईमानदारी के साथ इस बात को कहना चाहूंगा, और वो ये कि ये जो डेली ऑडियो गाइडेंस है, ये मैं बार बार कहता भी हूं, ये केवल आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग का पार्ट है। कैपेसिटी बिल्डिंग, आप में क्षमताएं पैदा करने की कोशिश हो रही है, आपको क्षमताएं प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अगर आज किसी टॉपिक पर बात कर रहा हूं और आप दो साल के बाद कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बैठेंगे या मेंस में पहुंचेंगे तो मेरी आज की बात आपको वहां ज्यों की त्यों काम आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस समय तक चीजें बदल चुकी होंगी, अभी की बातें गलत साबित हो चुकी होंगी और कुछ नई बातें स्थापित हो चुकी होंगी। मान लीजिए कि मैं आज आपको भारत और फ्रांस के संबंधों के बारे में कुछ बताऊं, वो आज की बात है। आपको क्या लगता है कि डेढ़ साल दो साल के बाद भी भारत और फ्रांस के संबंध आज जैसे ही होंगे? अगर हम उसे अपडेट नहीं करेंगे, आप उसे अपडेट नहीं करेंगे तो वहां आप दौड़ से बाहर हो जाएंगे। तो फिर मेरे इस ऑडियो का फायदा क्या हुआ? आज आप सुन रहे हैं, पता नहीं आप कब प्री में बैठेंगे, बैठेंगे भी तो प्री क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, फिर कब आपकी मेंस में बारी आएगी, फिर मेंस क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, फिर कब आपके इंटरव्यू की बारी आएगी, क्या पता है। तो अगर आप मेरे इस डेली ऑडियो गाइडेंस को यह मान करके चल रहे हैं कि यह परीक्षा की पूरी तैयारी करा रही है, तो मुझे लगता है कि आप इसे सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं। प्लीज, इससे अगर आपको सही फायदा उठाना है, पूरा पूरा फायदा उठाना है, और आपको अपने सिविल सर्विस की तैयारी को इंश्योर करना है, तो अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल नोट कर लीजिए कि ये जो ऑडियो गाइडेंस है ये आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है, आप में क्षमताएं पैदा करने की कोशिश कर रहा है, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो 15 मिनट की न्यूज आती है इसमें कौन कौन सी न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही मैं ये भी बताने की कोशिश करता हूं फ्रेंड्स कि इंपॉर्टेंट क्यों होती है। मैं ये भी बताने की कोशिश करता हूं कि न्यूज तो ये है लेकिन इसके पीछे व्यूज क्या है, ये तो मात्र घटना है। घटना पर सिविल सर्विस में प्रश्न नहीं पूछे जाते, इस घटना से जुड़े हुए कौन से सिद्धांत इमर्ज होते हैं, किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, ताकि आप में ये समझ सकें कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, किसी टॉपिक को आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे उसके डिफरेंट डिफरेंट एंगल निकाल करके उसे समझना है, कैसे आप उसकी समीक्षा करेंगे, कैसे उसके डेप्थ में जाएंगे, कैसे उसी टॉपिक को डिफरेंट डिसिप्लिनरी अप्रोच के तहत सॉल्व करेंगे, उसको कैसे अलग अलग ढंग से आप देखेंगे समझेंगे। एक टॉपिक को लेकर के मैं जो थोड़े से विस्तार से जाता हूं उसका मतलब यह नहीं कि मैं आपको उस टॉपिक पर तैयारी करा रहा हूं, मेरा मतलब केवल यह होता है कि आप जान सके कि यह जो एक टॉपिक है इसको सर ने डेली ऑडियो में इतने इतने तरीके से यहां यहां से बताया है, यहां यहां से उसके रास्ते निकाले हैं, ये कोण उभर करके आए हैं। तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी टॉपिक के साथ भी हो सकता है, और होता ही और होना ही चाहिए, और आपको इतने अंदर इतनी कैपेसिटी पैदा करनी पड़ेगी। अगर ये कैपेसिटी पैदा नहीं हो पाती है मित्रों, तो मुझे ये कहने के लिए माफ कीजिएगा कि कम से कम सिविल सर्विस का जो मेन है, आईएएस का मेन है, मैं जब सिविल सर्विस कहता हूं फ्रेंड तो उसको आप आईएएस एग्जाम ले लीजिएगा, उसका मेंस में अच्छे नंबर लाना बहुत मुश्किल होगा। मैं अच्छे नंबर की बात कर रहा हूं, हो सकता है कि बॉर्डर लाइन पर आए और आप मेंस में सेलेक्ट भी हो जाएं, लेकिन याद रखिए कि मेंस में सिलेक्शन होने के बाद भी जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट 3:1 का है, तीन में एक ही फाइनल लिस्ट में नाम आएगा और जो बाकी दो लोग बाहर हो जाएंगे तीन में से, वो फिर शुरुआत प्री से करनी होगी उनको। ऐसा नहीं है कि उनको बीच में कहीं एंट्री मिल जाएगी। तो ये सारे चैलेंजेस हैं सिविल सर्विस के, और सच पूछे तो यही तो वो बातें हैं जो इसे बहुत खूबसूरत बनाती हैं, इसे चुनौतियों से भरा हुआ बनाती हैं, और इसीलिए तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस भी है। अगर आज सिविल सर्विस के इसी एग्जाम को बहुत आसान बना दिया जाए, जिसे बहुत ही सामान्य से स्टूडेंट सामान्य तैयारी में भी क्वालिफाई कर जाए, तो फिर आप सोच करके देखिए कि इससे मिलने वाली जो नौकरी होगी या मिलने वाली जो सामाजिक प्रतिष्ठा होगी वो असाधारण कैसे हो सकती है। वह भी सामान्य सी होगी, क्योंकि सामने वाला जान रहा है कि आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चलाया है, कोई बहुत बड़ी इंटेलिजेंसिया का प्रमाण आपने नहीं दिया है। लेकिन अभी जब आप सिविल सर्विस क्वालिफाई करते हैं तो पूरी सोसाइटी जानती है, पूरा समाज जानता है, लोग जानते हैं कि ये आपका बहुत बड़ी योग्यता का प्रमाण है। ये सामान्य सी बात नहीं थी। बहुत से लोग आपको अपनी जिंदगी में मिलेंगे जिन्होंने इसके लिए बहुत कोशिशें की लेकिन वो नहीं हो पाए। जब आप देखते हैं कि ये एक व्यक्ति है जो हो गया और मैं एक व्यक्ति हूं जो नहीं हो पाया, उनके मन में स्वाभाविक रूप से आपके लिए श्रद्धा सम्मान का भाव पैदा होगा। तो वो जो श्रद्धा और सम्मान का भाव है उसको आप एंजॉय करते हैं, जिंदगी भर एंजॉय करते हैं जब आप सिविल सर्वेंट होते हैं। तो दोस्तों, इसको पाने के लिए कुछ तो अतिरिक्त मेहनत करनी ही पड़ेगी, और ये जो अतिरिक्त मेहनत है दोस्तों, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, बार बार दोहराना चाहूंगा, और समय समय पर मैं कहता भी रहूंगा कि ये कैपेसिटी बिल्डिंग से आएगी। जब तक आप अपने अंदर वो क्षमता पैदा नहीं करेंगे तब तक वो बात नहीं बनेगी। और मेरी कोशिश सच पूछे तो छोटी छोटी बातों में भी यही है। जब मुझे लगा कि नहीं, आप लोग जो ईमेल भेज रहे हैं वो ईमेल बहुत सतर्कता से लिखें, उसमें कंटेंट लाएं, भाषा पर भी थोड़ा सा काम करें, ऐसा नहीं कि मन में आया और कीबोर्ड में जाकर के खेलने लगे और मेल कर दिया, तब मैंने उसमें से बेस्ट ईमेल छांटना शुरू किया, घोषित करना शुरू किया। और मैं देख रहा हूं कि जब से मैंने ये कहा है ईमेल की क्वालिटी बदल गई है। आपको नहीं पता होगा लेकिन अब मेरे पास जितने अच्छे मेल आ रहे हैं उतने अच्छे मेल मेरे पास कभी नहीं आए। मेरे पास एक मेल ऐसा भी आया जो कह रहे हैं ये फालतू की चीज है, इससे क्या फायदा होना है, इससे किसको फायदा होना है, किसको पता लगता है कि आपने किस मेल को अच्छा घोषित किया है और उसमें क्या अच्छा था, ये फालतू की चीज है। जो ये बात कह रहे हैं वो इन चीजों को, इस तंत्र को समझ नहीं पा रहे हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे सुधार आते हैं। ठीक है, उनकी अपनी बोल्डनेस हो सकती है इन सारी चीजों को रिजेक्ट करने की, क्योंकि दुनिया में रिजेक्ट करना तो सबसे आसान काम है, आप किसी को भी रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन जब करना पड़ता है, जब क्रिएटिविटी की बात आती है कि खुद कीजिए, तब पता लगता है कि कैसे होता है और ये कितना कठिन रास्ता होता है। तो दोस्तों, चीजें बड़ी छोटे छोटे रूप में चेतना में घर करती हैं, और बेस्ट मेल घोषित करने का मेरा मकसद यही है कि जिनके मेल बेस्ट घोषित होते हैं स्वाभाविक है कि उनको, उनके मन में उत्साह पैदा होता है, अपने प्रति कॉन्फिडेंस आता है, तो वो अपने को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और दूसरे जिनके अभी घोषित नहीं हुए हैं, जो मेल लिख रहे हैं, वो इस कोशिश में होते हैं कि उनके भी बेस्ट घोषित हों, तो वो अपने को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश की प्रोसेस में एक दिन बेस्ट बन जाते हैं। सच पूछे दोस्तों तो ये जो मेरा डेली ऑडियो है वो आपको धीरे 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 मांझ 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 कर केवल बेस्ट बनाने की ओर ले जाने की यात्रा है, नथिंग एल्स। तो जब आप इस पूरे डेली ऑडियो को इस रूप में देखेंगे तब मुझे लगता है कि शायद मेरे साथ भी सही न्याय कर पाए, इस ऑडियो के साथ भी सही न्याय कर पाएं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शायद आप जो इसे डेली 30-35 मिनट देते हैं उसके साथ भी सही न्याय कर पाएंगे। और यही अर्ज दोस्तों फरवरी के बैच में आने वाले मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि यहां की जो 15 दिन की क्लासेस हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ही डिफरेंट किस्म की क्लासेस हैं। आप यहां सोचेंगे कि सब्जेक्ट की तैयारी करने आप आ रहे हैं, सिलेबस करने आ रहे हैं, तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी, लेकिन उससे परे भी नहीं होगी। ये गारंटी जरूर मैं दे सकता हूं कि जब आप यहां से जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपकी ढेर सारी तैयारी तो हो चुकी है, अब करना क्या है, केवल इस दीवार खड़ी है, अब इस पर पॉलिश करके सीमेंट का पलस्तर करके इसे मजबूत बनाना है, और उसके बिना बात बनती भी नहीं है। तो दोस्तों आज के लाइफ मैनेजमेंट में चलिए, मैंने डेली ऑडियो का आप कैसे फायदा उठाएं, कैसे इसको अपने लिए बेहतर इस्तेमाल में ला सकें, इसी पर मैंने बात की है। आगे हम लोग और बात करेंगे, और हम जब बात करेंगे तो उसी पर बात करेंगे कि सीखा कैसे जाता है, इसी पर एक आध ऑडियो और तैयार किया जाएगा। तो अब मैं आता हूं एआईआर न्यूज पर। फ्रेंड्स, कल के एआईआर न्यूज में 5 पॉइंट्स हैं जो मैं शुरू में आपके ध्यान में ला देता हूं, जो पूरे के पूरे इतने सारी जो न्यूज आइटम्स थे उनमें से 5 आपके सिविल सर्विस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। हालांकि 1-2 ऐसे भी न्यूज हैं जिसमें कंटेंट के तौर पर आपको कुछ विशेष नहीं मिलेगा, लेकिन उनसे सिविल सर्विस के क्वेश्चंस बनते हैं। एक जो न्यूज थी दोस्तों वो प्रधानमंत्री से संबंधित थी कि उन्होंने नौकरशाहों को ये अलर्ट किया है, ब्यूरोक्रेट्स को, कि जो जन शिकायतें होती हैं, जो जन शिकायतों के प्रति वो संवेदनशील रुख दिखाएं और जन शिकायतों को निपटाने पर ध्यान दें। ये पहली न्यूज थी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आगे चलकर बात करूंगा। दूसरी जो खबर थी फ्रेंड्स वो सुप्रीम कोर्ट की थी। आपको मालूम है कल हम लोगों ने इसके बारे में बात भी की थी कि अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने कमेंट्स किए हैं और उसको लेकर के एक बहस जैसी स्थिति अब देश में बन रही है, इसको लेकर के भी मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगा सिविल सर्विस के लिहाज से। तीसरी जो खबर है दोस्तों वो जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में जो शिंगलापुर शनि देव का जो मंदिर है उसमें महिलाओं के प्रवेश को लेकर के जो एक स्थितियां जो बन रही हैं, अब ये महिलाओं के अधिकारों से भी बात जुड़ गई है और खासकर धार्मिक अधिकारों से भी बात जुड़ गई है, जिसमें संविधान का भी मामला आ गया है। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट थे न्यूज में वो ये है कि जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये इस बात को माना है कि महिलाओं को वहां जाने से रोका नहीं जाना चाहिए, उनको भी धर्म के मामले में समानता का अधिकार है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसलिए है दोस्तों, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर तो हैं ही, नो डाउट कि वो महाराष्ट्र राज्य के सीईओ हैं। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि वो जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, और स्वाभाविक है कि उनका ये जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं एक तरह से पार्टी के विचारों को भी व्यक्त करता है, और ये बहुत बड़ी बात है कि चीफ मिनिस्टर उसे स्वीकार कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट घटना है। और अगर आपने अखबार भी आज के पढ़े हो तो आप देखेंगे कि शनिदेव मंदिर के ही एक जो महंत या धार्मिक जो व्यक्ति हैं उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि मंदिर में प्रवेश करने से महिलाओं को रोका नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है, ये जो न्यूज है, ये बेसिकली अब महिलाओं के समानता के अधिकार से जुड़ गया है। आपको इसे इसी रूप में देखना होगा। सिविल सर्विस में कभी सीधे सीधे ये नहीं पूछा जाएगा कि उस मंदिर की घटना के बारे में बताइए और क्या आपके ओपिनियन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट इस मायने में है कि आप पिछले 3 साल के पेपर्स उठा करके देखें जनरल स्टडीज के। मैं खासकर 3 साल के ही पेपर्स की बात करता हूं क्योंकि नए पैटर्न में यही 3 साल के पेपर्स हमारे सामने उपलब्ध हैं। आप देखेंगे कि जनरल स्टडीज का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें एटलीस्ट 2 से 4 क्वेश्चन महिलाओं पर होते ही होते हैं। जो विमेन एम्पावरमेंट के जो इश्यूज हैं या विमेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके जो इश्यूज हैं उन पर हमेशा 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, ये अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। और ये मान करके चलिए कि ये रहेगा ही, तो आपको जो महिलाओं से संबंधित जो इस तरह की घटनाएं होती हैं डेफिनेटली उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, जैसे अभी आप देखिए कि मैटरनिटी लीव बढ़ाई जा रही है, बहुत से प्राइवेट कंपनीज तक ने कह दिए कि उनको 6 महीने के लिए उनको छुट्टी मिलेगी, वेतन के सहित छुट्टी मिलेगी। तो इस तरह के जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो आपके जेहन में बिल्कुल बस जाने चाहिए और आपको नोट कर लेना चाहिए और उन्हें समय समय पर दोहराते रहना चाहिए। क्योंकि जब आप समय समय पर दोहराते रहेंगे फ्रेंड्स, तभी वो बातें, वो चीजें, वो घटनाएं आपके दिमाग में ताजी रहेंगी। और अगर वो ताजी नहीं रहेंगी तो परीक्षा में जो आपके सामने समय का दबाव होता है, उस समय वो चीजें आपके दिमाग में उभर कर नहीं आ पाएंगी, आप वहां लिख नहीं सकेंगे। ये बात अलग है कि हॉल से बाहर आने के बाद आपको लगेगा कि अरे ये आपसे मिस हो गया, लेकिन तब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये जो मंदिर का जो मामला है, ये कंटेंट के रूप में आपके दिमाग में होना चाहिए। और जो हमारे समाज में जो समानता का अधिकार है और खासकर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये किस धारा में है, किस रूप में कहा गया है, ये भी आपको नोट करके अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए। मित्रों, एक जो नेक्स्ट जो खबर थी वो थी भ्रष्टाचार के सूचकांक को लेकर। ये भी आपने देखा और आप अखबारों में भी आज काफी कुछ आया है, इस पर एडिटोरियल कमेंट भी है। इस पर बहुत अच्छा जो एक प्रेजेंटेशन है वो दैनिक भास्कर का है, काफी बड़ा प्रेजेंटेशन है और वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी कर रहा हूं, उस आइटम को, न्यूज आइटम को ही प्रोवाइड कर रहा हूं। फिर दैनिक भास्कर ने इस पर एक एडिटोरियल कमेंट भी लिखा है, वो भी आपको प्रेस क्लिप नॉलेज सेंटर में अवेलेबल होगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं कि न्यूज है, क्यों पहले भारत 85वें स्थान पर था, अब वो घट करके 76वें स्थान पर आ गया है। हालांकि समीक्षा में जब आप देखेंगे तो पहले देशों की संख्या बहुत ज्यादा थी, उस समय हम 85वें में थे, अब देशों की संख्या घट गई है तो हम 76वें में आ गए हैं। तो इनफैक्ट सही मायने में जो थोड़े से स्थान की जो बढ़ोतरी हुई 9 स्थान की, मतलब हमने जो सिचुएशन को इंप्रूव किया है, इनफैक्ट वो रियल इंप्रूवमेंट नहीं है। और आप देखेंगे कुछ न्यूज आइटम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझता हूं कि शायद बहुत महत्वपूर्ण भी है, कि जो बताए जा रहे हैं कि जिन देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति सबसे कम है, वे देश आपको दिखाई देंगे जो खासकर जैसे स्वीडन है, डेनमार्क है, ये छोटे छोटे देश हैं। वैसे भी यहां जीवन स्तर के जीवन स्तर भी यहां का काफी ऊंचा बताया जाता है, और साथ ही पर्यावरण के मामले में भी ये जो देश है ये दूसरों की तुलना में काफी बेहतर है। तो ये अब चूंकि भ्रष्टाचार पर प्रश्न अक्सर सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछ लिए जाते हैं और इंटरव्यू में भी आपसे सवाल किए जा सकते हैं, खासकर उसमें आप देखेंगे कि एक जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिस एजेंसी ने ये खासकर रैंकिंग दी है, उसके जो हेड हैं उनका इंटरव्यू भी छपा हुआ है, उसमें उन्होंने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं कि भारत में भ्रष्टाचार के मामले किससे रिलेटेड हैं और क्यों ये ठीक नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने 2-3 सुझाव दिए हैं और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को वो सुझाव नोट कर लेने चाहिए। एक उन्होंने यही कहा है कि वहां का नौकरशाह अभी भी भ्रष्टाचार के मामले में पीछे नहीं है, हर काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं, कमीशनखोरी बहुत ज्यादा, ये उन्होंने बात कही है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो खासकर जो एजेंसीज हैं उनको फ्री किया जाना चाहिए, जैसे सीबीआई का उन्होंने नाम लिया कि इस तरह की जो एजेंसीज हैं उन एजेंसीज को और फ्रीडम दी जानी चाहिए ताकि वो बहुत खुले रूप में निर्भीकता के साथ अपना काम कर सके। तो इस तरह के कुछ उन्होंने उपाय भी बताए हैं, वो आप जब देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। इसके बाद मित्रों, जो लास्ट खबर थी वो हिना सिद्धू से संबंधित है कि उन्होंने 10 मीटर के एयर पिस्टल में ओलंपिक में उन्होंने ओलंपिक कोटा में वो प्रवेश कर गई है। हिना सिद्धू, आपको मालूम होना चाहिए कि वो एयर पिस्टल 100 मीटर एयर पिस्टल की जो हमारी प्लेयर रही हैं, और खासकर आप देखेंगे कि इस बीच में तीरंदाजी, निशानेबाजी, पहलवानी, इन सब में भारत धीरे धीरे लगातार स्पोर्ट्स में इंप्रूव करता जा रहा है। और स्पोर्ट्स के फील्ड से भी एक क्वेश्चन मैंने देखा है कि मेंस में पूछ ही लिया जाता है, लेकिन जहां तक हिना सिद्धू का नाम है तो ये आईएएस के प्री में तो नहीं पूछा जाने की संभावना मुझे लगती है, लेकिन जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उनमें पूछा जा सकता है कि हिना सिद्धू का संबंध किससे है, खेल से है, और अगर खेल पूछ लिया जाएगा तो किस खेल से है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मित्रों, अब मैं आता हूं थोड़ी सी एक दो इश्यूज पर जो सिविल सर्विस के लिहाज से मुझे इंपॉर्टेंट मालूम पड़ रहे हैं। नो डाउट कि अभी जो सबसे बर्निंग इश्यू है वो सुप्रीम कोर्ट का वो मामला है जो वहां दर्ज है, अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर। इस पर दोस्तों एक आइटम भी है, एक आइटम नहीं कहना चाहिए, एक आर्टिकल है जो विराग गुप्ता का लिखा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और इसमें इन्होंने राष्ट्रपति शासन को लेकर के बातें कही। हालांकि उनका इस आर्टिकल का ज्यादा संबंध अरुणाचल प्रदेश की घटनाक्रम से है, तो आपको पता लग जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या किस किस तरीके से घटनाएं घटी हैं। खासकर एक मैंने देखा है कि अक्सर भारत में केंद्र और राज्यों को लेकर के एक डिबेट चलती रहती है, बहस नहीं कहना चाहिए बल्कि कह लीजिए झड़प सी होती रहती है, वो फेडरल सिस्टम को लेकर के है। जो राज्य हैं वो लगातार इस बात केंद्र को पर आरोप लगाते रहते हैं इस बात का कि जो केंद्र है वो एक तरह से तानाशाह की तरह काम करती है, राज्यों की स्वतंत्रता को बाधित करती है, और इसके लिए ढेर सारे वो चीजें भी बताते हैं कि ऐसा वो क्यों महसूस करते हैं। तो आप किसी भी पॉलिटिकल साइंस की किताब में देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में देखेंगे, तो फेडरल स्ट्रक्चर पर आपको एक इंडिपेंडेंट चैप्टर मुझे लगता है कि मिल जाएगा, और उस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से काम नहीं कर रहा है, इस फेडरल स्ट्रक्चर पर कौन कौन से दूसरे दबाव हैं, इन सब के बारे में आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। देखिए, इस पकड़ के दो अलग अलग ब्रांच होंगी। पहली तो यह कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कि संवैधानिक व्यवस्था क्या है, बहुत अच्छे से आपकी समझ होनी चाहिए। जो दूसरी ब्रांच है वो ये होनी चाहिए कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो ये हैं, लेकिन इनफैक्ट जो प्रैक्टिकली हो रहा है वो क्या है, प्रैक्टिकली क्या कॉन्स्टिट्यूशन को ज्यों का त्यों फॉलो किया जा रहा है, या कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसमें पॉलिटिक्स कहां काम कर रही है, इसमें दूसरी चीजें कहां काम कर रही हैं, इसके बारे में आपकी बहुत गहरी समझ होनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे ये इशू है, इस इशू में आप जनरल स्टडीज से थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर के नॉलेज लेने की कोशिश करें, इसको जनरल स्टडीज ना मान ले। वैसे भी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो सब्जेक्ट है उस पर आपकी पकड़ जनरल स्टडीज से बेहतर होनी चाहिए। सामान्य समझ से आप पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएंगे। खासकर जो फेडरलिज्म को लेकर के जो आरोप लगाया जाता है, तो दोस्तों वो दो उसमें सबसे बड़ी बातें होती हैं। नंबर एक, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपालों की नियुक्ति, क्योंकि केंद्र सरकार करती है और फिर राज्यपाल एक तरीके से केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करते हैं। ये राज्य सरकारें लगातार इस बात का आरोप लगाती रहती हैं। दूसरा होता यही राष्ट्रपति शासन। आप राष्ट्रपति शासन पर जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो गवर्नर के रिकमेंडेशन के आधार पर लगाया जाता है। राज्यपाल ही इस बात की सिफारिश करता है कि यहां संवैधानिक व्यवस्था के तहत राज्य चीजें नहीं चल रही हैं, वो क्या कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है या आर्थिक स्थिति खराब है, वो जो भी रिकमेंड करता है, और फिर रिकमेंड करता है कि यह राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए, और फिर राष्ट्रपति उसके बारे में फिर निर्णय लेते हैं। नो डाउट कि आपने देखा है कि राष्ट्रपति सीधे निर्णय नहीं लेते, वो निर्णय बेसिकली केंद्रीय मंत्रिमंडल का ही होता है, हमारा संवैधानिक प्रोविजन है। ये दो इश्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर दूसरे और भी छोटे छोटे इश्यू हैं, लेकिन वो किसी मायने में कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप लगता है वो इन दो तथ्यों को लेकर के लगता है। तो इस तरह से फेडरलिज्म को लेकर के आपकी बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। कल भी मैंने एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड किया था जिसमें 1994 के एक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की बात कही थी। आज ढेर सारे आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स इसको लेकर के हैं, उनको पढ़ने के बाद ये आपके और भी अपडेट हो जाएगा। एक जो अंतिम जो बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, प्रधानमंत्री के नौकरशाह को लेकर के मैंने बात कही थी। अक्सर आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी पर एक क्वेश्चन हर साल होता ही है। ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाह है, नौकरशाहों पर लगातार वो तीखी आलोचना के विषय बन रहे हैं। हमारा जो एक सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, ब्यूरोक्रेटिक का सिस्टम है, उसमें सुधार की लगातार बात होती है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है, उसमें कभी आएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रिफॉर्म किया जाए, पुलिस डिपार्टमेंट में क्या रिफॉर्म किया जाए, रेवेन्यू सिस्टम में क्या, तो इस तरह की ढेर सारी बातें होती हैं। तो जहां भी नौकरशाही के रिफॉर्मेशन की बात आती है, आपको समझ लेना चाहिए कि यह सिविल सर्विस में आपके मदद करने वाली बात है और उस पर आपको बकायदे ध्यान देना चाहिए। तो मित्रों, अब वक्त बहुत अधिक बात करने की इजाजत नहीं दे रहा है, तो अपनी बात मैं AIR न्यूज की यहीं खत्म करूंगा। और जहां तक न्यूज़पेपर्स की बात है, आज कुछ क्लिपिंग्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, काफ़ी क्लिपिंग्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे और मुझे नहीं लगता है कि उनको समझने में आपको कुछ विशेष दिक्कत होगी। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं ईमेल पर। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट का नाम ले रहा हूं जो अभी फरवरी की क्लास में आ रहे हैं। इनका नाम है वीरेंद्र कुमार और आप गंगानगर राजस्थान से आ रहे हैं। इन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया है और ये कहा है कि जो भी स्टूडेंट उनसे कांटेक्ट करना चाहते हो कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका मोबाइल नंबर है 9413288486। दोस्तों, अब मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा सुरभि उपाध्याय को जो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से हैं, कि उन्होंने लिखा है कि जो ये डेली ऑडियो है और उसका खासकर जो लाइफ मैनेजमेंट का पार्ट है और जो ऑडियो फॉर एक्सीलेंस है उसको उनके पेरेंट्स सुनते हैं। तो सुरभि, अपने पेरेंट्स से मेरा अभिवादन कहिएगा और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि वो उसे सुनते हैं और डेफिनेटली उससे उसको लागू करने की भी कोशिश करते होंगे। और चूंकि ये आपका मेल अंबिकापुर से है तो मुझे तुरंत वो अपना शहर याद आ गया जब मैं अंबिकापुर में था और 75 से लेकर के 83 तक मैं अंबिकापुर में रहा हूँ। वहीं के कॉलेज में मैंने 4.5 साल पढ़ाया है, वहीं मेरी रेडीमेड कपड़े की एक छोटी सी दुकान थी। तो जिस तरह से मेरा गाँव चंद्रमेढ़ा जो छत्तीसगढ़ का ही है, अंबिकापुर जिले का ही है, सरगुजा जिले का, जो मेरे अंदर रचा बसा है, नो डाउट कि अंबिकापुर शहर भी मेरे अंदर लगभग उसी तरीके से रचा और बसा है और बहुत बड़ा योगदान उस शहर का मेरे जीवन में रहा है। तो मैं उस शहर को प्रणाम करता हूं और आपके इस मेल को पढ़ने के बाद चूंकि फिर से मुझे अपना वो शहर याद आ गया और वो दिन याद आ गए, इसीलिए मैं आपको भी इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। तो दोस्तों, बहुत से ईमेल हैं, ईमेल लिखने वाले सभी प्रिय मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद और उनके प्रति बहुत बहुत आभार। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के मैं नाम ले रहा हूं। रजत कुमार बोलपुर से, अवतार सिंह ढिल्लन पटियाला से, सिंधुजा शुक्ला, निधि रायकवाड़ छतरपुर से, तनुप्रिया सिंह दिल्ली से, मनीष दुबे आप भी दिल्ली से, मयंक वर्मा लखनऊ से, शैंकी कोट द्वारा उत्तराखंड से, राजेंद्र राव हैदराबाद से, प्रेम राज मीणा इम्फाल मणिपुर से, प्रीति बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से, ओम राज मीना जयपुर से, अनुराग मन्ना पटना से, संजीव तोमर दिल्ली से, तमन्ना सेठ, संजीव कुमार डेरा बस्सी पंजाब से, रितेश नायक महासमुंद छत्तीसगढ़ से, नानक बारीक जबलपुर से, तेजेंद्र कुमार दिल्ली से, आभा आप भी दिल्ली से, और दिल्ली से ही हैं विराट यादव। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज के जो इतने सारे मेल हैं इसमें दो मेल मैंने बेस्ट के रूप में छांटे हैं। इसमें एक है प्रीति बंसोड़ जो दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं और दूसरे हैं संजीव तोमर जो दिल्ली से हैं। तो प्रीति और संजीव, आप दोनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और भविष्य के बेहतरी के लिए शुभकामनाएं भी। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबकी अनुमति चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आप सबको एक बार फिर से मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।